एक महीने से ऊपर हो गया ना, 20 तारीख को निकले थे ना,
तो तब से ऐसे अब यहाँ मालूम हो रहा है कि अब अपने घर में पहुंच गया।
हाँ जी, सब आप ही के घर हैं।
ये एक तरह से भारत ही है, मिनी भारत है ये, है ना। अब तो बड़े खुश
नाम से हम लोग कह रहे थे यहाँ के, मुझे लगता ही नहीं मैंने अमेरिकन को कम से कम हिंदुस्तानी ज्यादा नजर आते हैं।
हमको तो यही लग रहा है, सब हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं। बहुत खुश है। कल से तुम लोगों को भगवान की कथाएं सुनाएंगे और खूब दृढ़ता से भगवान का भजन करना, संसार भी करना, बच्चों का पालन पोषण भी करना है, संसार भी चलाना है और साथ साथ में भगवान का भजन करना है। जितने गोप लोग थे अपना संसार पूरा देख रहे हैं, कृष्ण को भी प्रेम कर रहे हैं, ऐसा ही करना है। भगवत भक्ति बड़ी सहज है, न कुछ छोड़ना है न कुछ करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं, सबको कृष्ण का बना लेना है। नथिंग टू गिव अप, नथिंग टू गिव मनली और ऑल इन डिवोर्स should be to please Krishna and automatically all will be pleased. यही बस भगवान की सेवा इतनी सहज है, चलते फिरते उठते बैठते उनका नाम करो, बस भक्ति हो जाएगी, कोई परिश्रम नहीं। तुम्हारी बेटी पढ़ रही है ना और लड़का काम कर रहा है, जहाँ हमारा प्रवचन होगा वहाँ आ जाएंगे। आज तो आराम करो, शाम से आप लोग कथा कहेंगे और आप लोग भी आराम कीजिए। हम लोग तो 2:30 बजे से जगे हुए हैं।
क्या करूँ
हट तो डू
भाभी तो इतना खुश थे कि नींद नहीं आ रहा। हम लोग रात को 12 बजे जो कार्यक्रम थे यहाँ कृष्ण से, कल रात को बहुत लोग थे कृष्ण लंबा शिकार करते हैं।
रामचंद्र जी आगे आकर के अच्छा किया। चल रहा है, सब ठीक है।
आप तो आएंगे, आपके लिए नया कमरा बनवाया,
बनवाया है नया
कारपेट नहीं डलवाया, हम वेट करें जब आप आएंगे तभी।
कहाँ पर बन रहा है? पीछे की तरफ में,
कल आएंगे तो चलिए।
वो पीछे की तरफ में
नहीं, आगे की तरफ।
आगे की तरफ
बिल्कुल प्यार है।
अच्छा,
किसी को कारपेट इसलिए नहीं डाल रहे कि अंदर जाएगा।
कोई प्रोग्राम मिल करके
अभी बाकी
सबसे
जिनके
घर ठहरना है
उनसे
देख लेंगे। यहाँ तो 2 दिन बढ़ा दिया। प्रश्नों का उत्तर एक में दे देंगे, बहुत संक्षेप में। अब आज तो विश्राम कर लेने दो, और कल डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, उसका परामर्श जैसा होगा वैसा करें। अधिक परिश्रम करने से इधर लिखना दो दो तीन तीन बार बोल रहा लोगों से मिलना तो थोड़ी सी समस्या हो जाती। विशेष करके जिस दिन उतरता हूँ दूर से आता हूँ कुछ क्या जरूरत है। कितने कल से
भारत नल का लक्षण संसार का वैभव आने पर भी तनिक भी अभिमान नहीं और विश्व का वैभव समस्त नष्ट हो जाने पर भी तनिक भी चिंता नहीं है। सब समय राधा कृष्ण के चिंतन में किसी की भी निंदा नहीं करते, यहां तक कि अपने विरोधियों की भी निंदा नहीं करते। सबका सब जो सब लोगों को देखते हैं कि ये भगवान का भजन कर रहा है, जिसमें तृणादपि सुनीत भाव को करोर अपि सही मान कृपालु सबको भगवान की भक्ति के तरफ में ले चलने वाला, उसका अपना कोई कास्ट और क्रेज नहीं है, बस यही भगवत भक्ति का सब जीवों पर करुणा का विस्तार कर वो महाभाव। कभी किसी भी स्थिति में किसी की भी निंदा नहीं करें, हाँ यदि कभी कभी कृपालु होंगे तो नलकुबर मणिग्रीव को कहेंगे बेटा तू इतना नीचे गंदे काम में चला गया, चलो मैं तुमको अभी पवित्र बना करके और भगवान के चरण इसलिए कहा जाओ तुम वृक्ष हो, दया का प्रतीक है। यदि ऐसा नहीं करते
कृष्ण नहीं होते
तो वो कृष्ण की भक्ति नहीं जान पाता। उसके अंदर में जो कांटा गड़ा हुआ था बड़ी बेदर्दी से, तो वो समर्थ थे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। सुखदेव गोस्वामी रहते तो नारद गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के गुरु के गुरु हैं और जरा ऊपर उठे हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कभी कभी कंस को कह देंगे जैसे नराधम और ये सब ऐसे सब गाली दे देंगे, सुखदेव गोस्वामी जी नहीं देंगे एकदम।
नारद जी नहीं,
नारद जी तो दे देंगे क्योंकि वो बहुत कृपालु है बहुत। इसलिए ये कभी कह देंगे क्योंकि अभी थोड़े से अभी मूर्छित कर रहा
है
इसलिए कह देंगे और वो वहाँ बहुत ऊपर है किंतु ये नहीं कहेंगे। इसलिए मध्यम अधिकारी भक्तों को भी नहीं किसी की आलोचना करें, बस भगवान की तरफ दृष्टि दें। जिनमें ये सब गुण हो उनका अनुगमन करके भक्ति हमको दो। किसी सोसाइटी को आप पाना चाहते हैं, हम लोग न भक्ति पाना चाहते हैं, उसमें जो सहायता दे वो गुरु वैष्णव है। उसमें ये भेद नहीं होता कि हमारा ये शिष्य है हमारा ये शिष्य है हमारा ये जो सामने सब पर करो। बाघ आया सामने तो महाप्रभु जी ने क्या किया, कृष्ण भक्ति भव तुम्हारा करण कल्याण, हाथ उठा करके सूर कृष्ण क्या मतलब उनको। जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो बस कृष्ण 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 जिधर देखो कृष्ण का भजन करो कृष्ण की शिक्षा, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा और कल्याण नहीं होगा। और हमारे गोस्वामी लोग हैं रूप गोस्वामी गोस्वामी भैया ये भक्ति पाने के लिए वैष्णव नमापराध मत करो, इससे बचो। जड़ी भक्ति के लिए नमापराध क्या 10 प्रकार के नियम, इनसे जरूर बचो नहीं तो तुम्हारा कल्याण करो। जो भगवान का नाम का प्रचार करते हैं कृष्ण का नाम कृष्ण की भक्ति खबरदार शतांग निंदा साधुओं की निंदा बंद करो खबरदार, नहीं तो आग में जल करके भस्म हो जाओ। उनको देख करके प्रणाम करो दंड करो उनसे नमस्कार करो उनकी चीजें हैं जो उनको जरूरत है, तो उनको यदि हो सकता है तो सहायता करो, उनको कुछ सेवा करो, उनकी बात सुनो, भगवान की कथा सुनो। खबरदार जो भगवान का नाम करते हैं उनकी कभी भी निंदा विचार जो करते, विशेष करके जो इनको धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, कोई भी संसारिक चीज नहीं चाहिए, ऐसे जो ऊपर उठे हुए वैष्णव हैं उनका तो खबरदार। इसके बाद में गुरु का आया, पहले आया सतान और दूसरे पर क्या आया गुरु दूसरे नंबर, दूसरे नंबर पहला हुआ क्यों
गुरु का, तीसरे नंबर नंबर
दूसरा क्या है सतांग
देवी देवताओं को भगवान के बराबर,
देवी देवताओं को भगवान के बराबर मत मानो किंतु उनका निरादर मत करो, कर किसी भी देवता है भगवान की विभूति है इसलिए कभी निरादर नहीं करो, पूजा तो करो राधा कृष्ण किंतु यदि कोई मिल जाए देवता देवी तो उनको भी प्रणाम कर लो, उनको सम्मान दे दो, किंतु हमारे राधा कृष्ण आराध्य हैं और देवता देवी लोग भगवान के दास हैं। तब इसके बाद आया गुरु, गुरु की अवज्ञा कैसा गुरु जो इन लक्षणों से युक्त हो, समस्त शास्त्रों में पारंगत है, कोई भी डाउट आए उसको हटा दे और शास्त्र के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, सबको भगवान की तरफ में ले जाने की चेष्टा करता है और भगवान का भजन करते करते ऐसे अनुरक्त है कि अनुभूति उसकी है, अनुभूति हो गई निष्ठा रुचि आसक्ति इसके ऊपर तक चला जाए भाव अवस्था, उसको और कहीं पढ़ने की अब जरूरत नहीं रह गई, गुरु के वचनों में ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया है अब उसको कहीं शास्त्र माने कोई विद्या लौकिक जगत में पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ कमी है जो नाम के द्वारा नहीं हो सकता है, भक्ति के द्वारा नहीं हो सकता है, इन नास्तिक और जड़ बैक ये सब चीजों विद्याओं के इनके यहाँ हमारी कुछ पूरी हो। गौरकिशोर दास बाजी हरिदास ठाकुर जी और जो विद्या थी बस खत्म, उसके पास नहीं है पराविद्या, भगवत भक्ति है ये पराविद्या, जिसको पराविद्या लाभ हो गई उसको क्या संसार की विद्या की जरूरत है, यदि है तो वैष्णव ही नहीं
प्रचार के लिए आवश्यक है
राष्ट्रीय प्रचार।
हाँ वे बोलते हैं कि हाई क्लास पीपल
प्रचार और विश्व में और कुछ हम तो क्लास थ्री फेल है, हमको कोई विद्या नहीं है, अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, बंगला नहीं आती है, स्पेनिश भाषा नहीं आती है, कोई भाषा नहीं आती है, हम तो प्रेम की भाषा समझते, हमारी प्रेम की भाषा सभी समझ लेते हैं ना, क्या भी कोई भी विद्या की हो जो हो गया है पहले कर लिया है बस वो काफी, भगवान का नाम करने वाला कभी भी मूर्ख नहीं हो सकता, समस्त विद्याओं का उसमें समस्त विद्या है, ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको कृष्ण नहीं समझते, ऐसी कोई भाषा है उनका भक्त भी तो ऐसे ही मुख को देख करके समझ ले जाए देख के आए ये शास्त्र निंदन, शास्त्रों की निंदा मत करो, मानने क्या इसका मतलब क्या है, किसी शास्त्र की बात को नहीं मानते हैं तो वो अवज्ञा है, शास्त्रों में लिखा जैसे वैष्णव निंदा मत करो, साधु निंदा मत करो, गुरु अवज्ञा मत करो, और ये करते हैं तो ये शास्त्र का उल्लंघन है, कपटता मत करो। शास्त्र में कहीं लिखा गया कि देवता देवियों भगवान की देवी नहीं है, उनका भजन करने से देवलोक में जाते हैं और वहां से भ्रष्ट होकर चले जाते, और फिर कहीं लिखा नारायण ही सबसे, कृष्ण ही सर्वोत्तम, देवता देवी उनके दास दासी, उनकी अवज्ञा मत करो, कहीं लिखा कि भगवान का रूप नहीं है और कहीं लिखा भगवान का रूप है, अब किसके लिए लिखा है ये भगवान का रूप नहीं है, संसार का कोई भी रक्त हाड़ मांस का भगवान का रूप नहीं है, किंतु उनका अपराधिक सच्चिदानंदमय रूप है। दोनों का सामंजस्य, झूठ मत बोलो सच बोलो, दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है मतलब झूठ मत बोलो
सच बोलो,
दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर, क्या अंतर है? तुम बतलाओ तो सोच क्या अंतर है जी, झूठ मत बोलो सच बोलो, क्या इसमें अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस?
कई बार, कई बार
है,
कई बार मतलब झूठ भी सबसे बढ़ के होता है और सच भी
सबसे बढ़कर अच्छा होता है।
कई
बार तो तुमको तो कहा जैसे झूठ मत बोलो और सच बोलो, इन दोनों में जो हम कह रहे हैं उपदेश, इन दोनों में क्या अंतर है? तो बड़ी भारी पहली हो गई, आप सुलझाइए।
नहीं एक बात नहीं है,
मतलब एक ही बात तो है,
नहीं इसमें झूठ मत बोलो में एक
मतलब वर्ड का और लेटर का फर्क है। वर्ड का केवल द डिफरेंस ऑफ वर्ड्स एंड लेटर, बट मूड ऑफ बोथ आर सेम। उसी तरह से शास्त्र में कहीं से भगवान के नाम के बराबर दूसरे देवताओं का नाम है। यदि कहीं उनको अभिन्न माना गया है, ये एक ही है, किस लिए प्रियते हैं? शंकर को भगवान का कभी कभी बतलाया गया भगवान, किस लिए भगवान के प्रिय है? गुरु को भगवान कहा गया, किस लिए भगवान के प्रिय है, प्रियते हैं? तो अब उसमें लगाया जाएगा साक्षात हरि, हरि नहीं कहा जाएगा। कहीं कहा भी गया है नारद जी को भगवान 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 नारद उबास, क्योंकि भवमंद मोक्ष को वो जानने वाले हैं, कैसे मोक्ष होता है, कैसे भवमंदन होता है। आलस्य प्रमाद के साथ में हरिनाम कर ज्ञान सुन करके और शरीर में मैं और मेरा का भाव मत रखो, उसको छोड़ो।
नाम की महिमा को काल्पनिक समझिए, उस पे
नाम की महिमा को काल्पनिक मत समझो। या नाम लेने से भव सिंधु सुखानी, संसार सुख जाता है और प्रेमा भक्ति मिल जाती है, झूठ मत मानो। एक हरिनाम करने से संसार में हमने जितने कोटि कोटि पाप किए हैं उन्होंने वो सब जल कर, झूठ मत, जरूर वो कल्याण। और
अर्थवाद,
शास्त्र में जो बातें कही गई हैं वो अर्थवाद नहीं है। अर्थवाद मैंने क्या, केवल महिमा सूचक, महिमा सूचक नहीं यथार्थ वो सत्य है। कोई भी शास्त्र में जो बात लाएगा, तुम धन चाहते हैं तो असल संपत्ति भगवान के नाम के द्वारा है, इसमें झूठ मत समझो। तो हमको क्यों नहीं मिल रहा, तुम अभी समझ नहीं रहे, मिलेगा चाहोगे तुम जो भगवान को देने वाला नाम है वो क्यों नहीं संसार की ये संपत्ति को दे देगा? उसके पीछे फीचर था, हम लोगों के पीछे पीछे अर्थ दौड़ रहा, हम लोगों का जो मतलब है अर्थ हम नहीं चाहते। हम तो 3 वर्ष से आ रहे हैं, किसी से कोई अर्थ मांगा कभी नहीं। अपनी आवश्यक चीजें अपने आप जब मिल रही हैं तब क्या जरूरत है? हमारा कोई बड़ा प्लान नहीं है, ये का 15 कोटि का हमारा कोई प्लान, कोई भी 50 कोटि का हमारा प्लान, हमारा प्लान एक सबको भगवान के भजन में लगाओ, बस एक ही प्लान, कैसे हो जैसे हो। सकता है कुछ पंपलेट छापने के लिए $5 $10 की जरूरत है, कोई बात हमको कहने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाए। और कोई अश्रद्धालु व्यक्ति हो जिसको श्रद्धा नहीं है उसको हरिनाम मत, उसको भगवान की कथा मत सुनाओ, उसको ऐसे ले चलो जो कुछ प्रसाद दे करके चल बल चलते, कुछ और बातें हैं उनसे छल बल कर करके अगर कोई झंडा नहीं पड़ा, बड़ी सुंदर सुंदर पेड़ हैं और वहाँ पर एक नदी बहती है, बहुत ही रमणीय है, चलो तो जरा सैर करें। बस वृंदावन घुमा दिया और बस वहाँ की दूरी तक गई बस। आज बहुत हमने हमारे घर में बना है खीर बना है, चला चलो तो ठाकुर जी को अर्पण करके इधर से उधर करके थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे कहो भाई कृष्ण तो बड़े सुंदर एक लड़का था, उसको देखने से ही आदमी दीवाना हो जाता है। देखो लो जिसकी मूर्ति ऐसी है तो वो कर, इस तरह से धीरे 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 धीरे। किंतु अधिक विमुख हो, निंदुक हो मत जाओ, कौन जाएगा? नारद जी जैसे लोग, सुखदेव गोस्वामी जैसे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी लोग, ये उसके बाद वाला जो होगा तो उन्हें और थोड़ा सा नीचे तो हम लोग जाएंगे, उससे भी नीचे जो होगा तो आप लोग जाएंगे। किंतु ऐसे ऐसे उनको खोदना है, उनको मत चाहिए मधुमक्खी को कहने से आप और हरि नाम सुनाए ना, हरे कृष्ण बोलो, मधुमक्खियाँ क्या करेंगी? क्या करेंगी भैया?
तत्तैया के छत पे,
तत्तैया के छत पे तो अभी हाथ देकर के मत करो, जैसे नित्यानंद कहेगा, नित्यानंद कर सकते हैं, क्यों तुम लोग मत जाओ तत्तैया के, सांप को देकर के, स्नेक को देकर के मत उपदेश देने जाओ, गधे को दे करके उसके पीछे जा करके हे गधा महाराज जी आप हरिनाम कीजिए तो 200,000 जमा देगा, मत जाओ। तो ये सब जो है नमा अपराध है, इससे बच करके हरिनाम तब तो हम भगवान की तरफ। हमको भेड़िया धासान नहीं होना, भेड़िया धासान जानती हैं? भेड़ चराने वाला है, उसके पास में 100,000 भेड़ है, चरा रहा है, और एक छोटी सी नदी थी जिसमें इतना सा पानी था और थोड़ी चौड़ी थी, अंका था, और भेड़ों को उस पार ले जाना था, किंतु कोई भी भेड़ नहीं जा रहे, कोई भी भेड़ नहीं, बहुत चेष्टा किया नहीं जा रहे, तो एक को उठा करके और उधर में फेंक दिया उस किनारे की तरफ, तो मैं भय करती हुई उधर चली गई, इतने में जितनी भेड़े थी। तो इसमें हमको नहीं चल रहा, भगवान ने बुद्धि दी है, और देवता से भगवान का थोड़ा भी हो कोई दर्ज नहीं, किंतु अपराध नहीं। ऐसा संग होना चाहिए कि जहां पर कोई तनिक भी कोई कालापन नहीं है, कालापन मैंने मैल नहीं, बल्कि न हो तो वो अच्छा है, हरिनाम अपने घर में करें, किंतु जहां बुद्धि विकृत होती है, जहां वैष्णव की निंदा, शास्त्रों की निंदा, सबको सम्मान करते हुए यथायोग्य सहज तरीके, वो आदमी ऊपर उठ जाएगा। और विद्वान होने पर भी यदि ये सब करता है ना तो वो कहां रस आता है। हरे कृष्ण,
असल में वो ये सारे के सारे नियम अपने पे लागू कर देते हैं, कहते हैं हम तो इनको फॉलो करते हैं, दूसरे भी नहीं कर रहे हैं।
तो ये मथुरा बिना जाए बचन जी नहीं सकते, सब काम छोड़ करके चले जाते, अधिकांश चले जाते, और हमको तंग करते, हमारा मालिश करने के लिए आएंगे, हम एक मिनट भी इधर उधर नहीं जाना चाहें। उनको बक्त ना किसी कारण के दयालु है, तुक दयालु है, उनसे कृपा मांगने की जरूरत नहीं है, उनका हृदय इतना पिघल रहता है, अपने आप दया करने के लिए सब समय लालसा उनकी होती रहती है, इसलिए किसी को मांगने की भी, किंतु हम रह नहीं पाते। महाभारत का युद्ध हो रहा था, आ रहा है समझ में? महाभारत का युद्ध हो रहा था, लाखों लाखों सेनाएं दोनों तरफ से थी,
एक तरफ में कौरव, एक तरफ में पांडव, दोनों भाई, जैसे आजकल पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों भाई लड़ रहे हैं, दोनों एक ही वंश में, एक ही पिता की संतान, ये दोनों एक कह रहा है जैसे भैया हमको पांच गांव दे दो, और एक कहता है जी एक सुई की नोक नहीं देंगे, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं, हमने तो जीत लिया है ये सब। दूसरा कहता है जी कहीं रहने के लिए, सिर छिपाने के लिए कहीं जगह भी तो होनी चाहिए। तो वैसे ही लग रही थी खुद जोरों से लड़ाई, भीष्म पितामह जी कौरवों के सेनापति और भीम पांडवों के सेनापति, रोज लाखों आदमी मर रहे हैं, हाथी घोड़े सभी मर रहे हैं, रोज लाखों स्त्रियां विधवा हो रही हैं। उस समय में दुर्योधन डर गया और उसकी पत्नी भी डर गई, जब पांडवों ने तो प्रतिज्ञा की है जो उनको मारेंगे तो तुम मारेंगे, इसलिए दुर्योधन ने अपनी पत्नी को सलाह दिया कि तुम जाओ भीष्म पितामह के पास, बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी शक्ति है कुछ, उनके पास में जाओ, ये वर ले आओ जो हमको कोई मार न सके, ये वर मांगना है तुमको, भीष्म जी चाहें जो कर देंगे, इसलिए पूरे मन से हमारे पक्ष में नहीं है, लड़ते हैं तो हम लोगों के तरफ से, किंतु हृदय से उन्हीं की जीत चाहते हैं, इसलिए हम लोगों की जीत की कोई संभावना नहीं है, और नहीं तो पांडव लोग हमें मार डालेंगे तो विधवा हो जाएगी, तो जाओ भीष्म पितामह से जाकर के ये वर ले आओ कि मैं विधवा कभी नहीं होंगी, ये वर ले आओ। तो दुर्योधन भी गया, कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह ने, आज रात में आधी रात के समय में जब जगत सो रहा हो उस समय तुम अपनी पत्नी को लेकर के हमारे पास में आ जाओ, उस समय मैं ध्यान में रहता हूँ, उस समय हमारे अंदर में अलौकिक शक्ति होती है, मैं जैसा होगा वैसा करूँ। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, इधर पांडव लोगों को तो कुछ पता नहीं जैसा होने जा रहा, किंतु कृष्ण को चिंता है, वो सर्वदर्शी हैं, सबके बराबर हैं, उनके लिए शत्रु मित्र तो कोई है नहीं, तो अभी जो उनको आज शरणागत हो जाता है उसके लिए बड़ी चिंता करते हैं, इसलिए चिंता करने में क्या करना चाहिए, बस आज घना घोर वर्षा रात में आरंभ हुई, शाम से रुकने का नाम नहीं, मूसलाधार पानी और बड़ी जोर से ठंडी हवा चली, आंधी तूफान, पेड़ के पेड़ उखड़ने लगे। उसमें दुर्योधन ने कहा जी ये तो बड़ा भारी मुश्किल है, आज हम नहीं चलेंगे कल चलेंगे, इसलिए उन्होंने स्थगित कर दिया, ये बेमौत के मौत कहीं रास्ते में कहीं वज्र गिर गया, कुछ ऐसा हो गया, ये आंधी तूफान वर्षा में कौन जाए, आज रहने तो फिर कल चले, उनका तर्क स्थगित हो गया। और इधर कृष्ण ने द्रौपदी के लिए कहा जी बेटी आज तू हमारे साथ में चल, अभी आधी रात में, अभी जाकर के भीष्म पितामह जी ध्यान में बैठे होंगे, तुमसे वर ले लेना, आज उनको वर देने वाले थे दुर्योधन की पत्नी को, तो तुम छिप करके जरा घूंघट निकाल कर उतार करके जाना, जैसे वो समझ न सके, और तुमको कह देंगे अखिल सौभाग्यवती भव, तुम्हारा पति कभी नहीं मरे, तब फिर कोई बात करना, पहले बात मत करना, सामने घूंघट लगा करके बैठ जाना, हाथ जोड़ करके घुटनों के बल से बैठ जाना, बस जब वो वर दे दें तब तुम हंसे, उनको प्रणाम करना है, जो कुछ सीखा होगा, वर्षा में हो रही है, रथ में बिछा करके ले गए और उसको रथ से उतार करके छतरी में उसको उनके यहाँ पर पहुंचा दिया, वो घर में चली गई, देखा कि ध्यानस्थ होकर के भगवत ध्यान में मत है। वो जा करके बैठ गई, किंतु उनको पता था जो दुर्योधन की पत्नी आने वाली है उसको वर देना है। थोड़ी देर के बाद में उनका कुछ आहट हुई और ध्यान उनका भंग हुआ, देखा जैसे तो आ गई है ऐसे मुड़ करके और बैठी हुई है, प्रार्थना कर रही है, बेटी तुम सौभाग्यवती हो, तुम्हारा ये सुहाग अचल हो, तुम्हारा पति कभी नहीं मरे। जब कर दिया तो मुंगट उठा करके उनको पहना दिया, उनके चरणों की धूली। अरे बेटी तू कहाँ से आ गई, तू कहाँ से आ गई, तू तेरे साथ में और कोई आया है, जल्दी बता, जरूर कोई आया होगा, कौन आया है बतलाओ तो। मुस्कुराने लगी वो भी और कहा कि हमारे साथ में कृष्ण है। वहां से निकल करके कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। तो वो आपकी इच्छा के विपरीत जगत में कुछ नहीं हो सकता, ये सब आपकी इच्छा से हुआ,